नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। पिछले हफ्ते टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया, जो पिछले 65 साल से भी ज़्यादा सालों से भारतीय सरकारी एयरलाइंस था, यानी नेशनल कैरियर था, उसको भारतीय सरकार से खरीद लिया। खबरों के अनुसार टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की सफल बोली दी थी। आपको बता दें, एयर इंडिया की स्थापना जहांगीर रतनजी दादा भाई JRD टाटा ने 1932 में की थी। उस समय इस विमान कंपनी को टाटा एयरलाइंस कहा जाता था। एयर इंडिया की सेल के बाद रतन टाटा ने ट्विटर पे एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए कहा, एयर इंडिया का फिर से स्वागत है। तो उसी पे बात करते हैं आज दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ रॉय चौधरी जी से, जो 30 से भी ज़्यादा सालों से एविएशन और डिफेंस को कवर कर रहे थे और आजकल इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज और एनालिसिस के साथ जुड़े हैं। SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका स्वागत है अमिताभ जी।
नमस्कार।
तो आप हमें सबसे पहले बताइए, टाटा और एयर इंडिया का पिछला क्या संबंध रहा, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं?
देखिए, टाटा का तो बहुत पुराना संबंध है एयर इंडिया के साथ, और हम ये कह सकते हैं कि एयर इंडियाज लाइफ इज कम टू अ फुल सर्कल। सबसे पहले जो इंडियन एयरलाइन जो टाटा ने शुरू किया था, टाटा एयरलाइन के नाम से जाना जाता था 1932, और उसके बाद उसी को मेरे ख्याल से 1946 में उसको एज एयर इंडिया रजिस्टर किया गया था, एंड बाद में एयर इंडिया इंटरनेशनल हुआ था, जो कि बाद में उसको नेशनलाइज करके एयर इंडिया सरकारी एयरलाइन बन गई थी। अभी दोबारा सरकार ने टाटाज को ही बेचा है, तो इतने सालों बाद टाटाज, जिनके पास ऑलरेडी दो एयरलाइन उनके पास ऑलरेडी है, उसके साथ ही तीसरा एयरलाइन उनके पास हो जाएगा।
तो आपके अनुसार इस सेल के बाद एयर इंडिया में किस तरह का बदलाव आ सकता है?
एयर इंडिया को सुधारने की बात है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा खर्चा भी है जो टाटा को बियर करना पड़ेगा। एक तो है वर्क कल्चर, मेनली जो टाटा जिस तरह का स्टैंडर्ड चाहते हैं वर्क कल्चर का, जो हम देख पाते हैं उनके जो एयरलाइन है विस्तारा में या एयर एशिया इंडिया में भी कुछ हद तक, ये वर्क कल्चर एयर इंडिया में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि प्रोफेशनल हो और भी इनवाइटिंग हो फॉर द कस्टमर्स। सिर्फ ये सर्विसेज ही नहीं, एयर क्रू का ट्रेनिंग ही नहीं, रीट्रेनिंग रादर। हालांकि एयर इंडिया में बहुत अच्छे सक्षम लोग हैं क्रू में, पायलट्स में, और इसके अलावा जो मैं कह रहा था कि खर्चा बहुत आएगा, वो सिर्फ ट्रेनिंग पे नहीं, जितने भी एयरक्राफ्ट अभी वो लेंगे, जो करीब 141 एयरक्राफ्ट हैं एयर इंडिया के, दैट इंक्लूड्स 23 जो ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट हैं, इनको फिर से रिफर्बिश करना पड़ेगा, या इनको टाटा को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये 23 एयरक्राफ्ट जो ग्राउंडेड है उनका क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा जो बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं उनको किस तरह से रिफर्बिश करेंगे, उनके सीट्स बदलेंगे या उनके उसमें कार्गो होल्ड ज्यादा होगा या कम होगा, किस तरह के सीट्स होंगे, कितने बिजनेस क्लास होंगे, कितने अगर प्रीमियम इकोनॉमी इंट्रोड्यूस करते हैं उसके लिए अलग से अलग किस्म के सीट्स होते हैं, ये इसमें बहुत सारे खर्चा है। तो टाटा को ये दो मेजर चीजें अभी एक्विजिशन प्रोसेस के बाद उनको शुरू करना पड़ेगा, जो काफी मेजर चैलेंजेस हैं फाइनेंशियली ऑल्सो। हम उम्मीद करते हैं कि टाटा विल बी एबल टू डू इट सक्सेसफुली, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी शोन प्रूवन देयर एक्सपर्टीज इन दिस विद द हेल्प ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस, जो विस्तारा सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा 51-49 ओन करते हैं परसेंट। तो हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन उस आते आते एक दो साल तो बीत ही जाएंगे।
जी अमिताभ जी, फ्लाइट रूट्स पे किस प्रकार का बदलाव आ सकता है? 2013 में ऑस्ट्रेलिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स जो शुरू हुई है, उसमें कोई चेंजेस आपको लगता है जो आ सकती हैं?
देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ये एक्चुअली एयर इंडिया के पास शायद बायलैटरल अभी भी हैं, और ये बायलैटरल एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि बायलैटरल एग्रीमेंट्स आर नॉट गवर्न्ड बाय द एयरलाइंस, they are governed by these agreements are signed between two governments, सो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में अगर सरकार दोनों के सरकार बैठ के ये बायलैटरल एग्रीमेंट्स को और एनहांस करें बढ़ाएं तो उसमें काफी फायदा होगा ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए इंडियंस को, इवन अदर्स जो कि फिर यहाँ से देखें यू नो जैसे मेलबर्न से इंडिया आए एक स्टॉप ओवर के बाद सीधा लंदन पहुंच जाए, इस तरह के रूट्स भी एयर इंडिया आने वाले समय में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नया एयर इंडिया जो बन रहा है तो इसमें काफी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो ये बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो इनको साइन करना है बढ़ाने के लिए, उसमें ये होता है कि बायलैटरल एग्रीमेंट्स में आप जैसे इंडियन नेशनल कैरियर है और ऑस्ट्रेलियन नेशनल कैरियर है, दोनों एक दूसरे के कंट्रीज में फ्रीली जा सकते हैं, उनको लैंडिंग स्लॉट्स पार्किंग स्लॉट्स लेना पड़ता है और ईच अदर एक दूसरे के कंट्रीज में, और उसी हिसाब से वो टाइमिंग अपना फ्लाइट का फिक्स करते हैं। सो मुझे लगता है उम्मीद तो है लेकिन इतनी जल्दी शायद टाटा जिस तरह से उनका जो बिजनेस भी चलता है दे डोंट इमीडिएटली टेक अ डिसीजन टू डू इमीडिएट थिंग्स, तो मुझे लगता है थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन आने वाले समय में डायवर्ज कह रहा हूँ एक दो साल के बाद ये इम्प्रूवमेंट्स हम सारा सब कुछ देख पाएंगे। और सर्विस एयर इंडिया के तो बहुत सारे हैं, नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया बट इनके जो फ्लाइट स्लॉट्स हैं एयर इंडिया के करीब इंटरनेशनल फ्लाइट स्लॉट्स बुक करना पड़ता है हर एक एयरपोर्ट के साथ, वो इंटरनेशनल फ्लाइट स्लॉट्स करीब 1000 हैं, 10,000 इट्स आई थिंक अराउंड 1000 something, so इस flight slots in flight slots को जो नया Air India है उसको ये पूरी तरह से exploit कर सकते हैं क्योंकि अभी इनके पास जो fleet number of aircraft होगा, अगर हम देखें कि अगर टाटा सोचे कि विस्तारा और Air India या Air Asia और Air India को merge करें और एक साथ ये करे तो इनका एक नॉट ओनली इन डोमेस्टिक नेटवर्क जिसमें एयर इंडिया का डोमिनेशन तो है ही बट इंटरनेशनली भी बहुत सारे रूट्स पे इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे ये लोग इतने दिन से एयर इंडिया हवाई जहाज की कमी की वजह से चला नहीं पा रहे थे, उड़ा नहीं पा रहे थे, वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट भी बढ़ जाएंगे।
अमिताभ जी, SBS हिंदी प्रोग्राम से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।